السلام علیکم، یہ پارٹ 17 ہے، ناول کال بیل، حصہ دوم۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز قمر خلیل، پیشکش کتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 17۔ اس کے کھلے ہوئے بال میرے چہرے اور شانوں پر بکھر رہے تھے۔ ان زہریلے ناگوں جیسی چکنی ریشمی زلفوں کو میں نے اپنے لبوں سے چوم لیا۔ اس نے ساکت رہ کر میری حوصلہ افزائی کی۔ وہ سارے جذبے جو اس کے احتجاج کے خوف سے دبے ہوئے تھے سر اٹھانے لگے۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ مدہوشی تھی کہ مجھے میرا آپ بھلا گئی۔ طوفان تھا جو مجھے بہا کر کہیں سے کہیں لے گیا۔ میں نے آگ کا سمندر پار کر لیا۔ فرحت نے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا۔ وہ چپ چاپ میرے قریب سمٹی بیٹھی رہی۔ طوفان کا زور ٹوٹا تو احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا۔ خوف آیا کہ نیچے منے دادا، خالہ بھی اور بھی جان ہیں۔ افسوس ہوا کہ میرے کردار کی مضبوطی ملبے گھر ڈھیر بن گئی۔ شرمندگی ہوئی کہ میں طیب کی سطح سے بھی نیچے گر گیا۔ میرا وہ روب دب دبا، وہ وقار جو ہر لڑکی کی نگاہ میں میرا احترام پیدا کر دیا کرتا تھا، گویا ہوا میں تحلیل ہو چکا ہے۔ میں زمین پر پڑے کسی لجلجے کیڑے میں تبدیل ہو چکا ہوں۔ فرحی، مجھے معاف کر دو، میں جاتے ہی اما کو بھیجوں گا بہت جلد، میں نے پیشانی پر آئے پسینے کو پہنچتے ہوئے کہا۔ فرحت نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ فرحت میں بے قابو ہو گیا تھا۔ فرحت وہ اب چپ چاپ کھڑی ہو گئی جبکہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اسی جانب الٹے قدموں بڑھنا شروع کر دیا جس جانب سے آئی تھی۔ اب مجھے خیال آیا کہ وہ اس طرف سے کیسے آئی تھی، سیڑھیاں تو دوسری طرف ہیں۔ وہ اب بھی اسی جانب بڑھ رہی تھی۔ فرحی، کہاں جا رہی ہو؟ ادھر سے کیسے آئیں تم؟ رستہ ہے، سیڑھیاں ہیں کیا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ میں سمجھا کوئی راستہ ہوگا، تبھی تو آئی تھی، سنبھل کے جانا فرحی۔ اس نے یوں دیوار کی طرف قدم رکھا جسے سیڑھی پر رکھا ہو۔ میں کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس نے میری جانب ہاتھ ہلایا تو شرمندگی کا وہ احساس جو اس کی خاموشی نے شدید تر کر دیا تھا کچھ کم ہوا۔ میں نے بوجھ کم ہوتا محسوس کیا اور خوش ہو کر ہاتھ ہلایا، گویا فرحت نے مجھے معاف کر دیا۔ اس خیال نے مجھے کچھ بہتر تو کر دیا، مگر میرا اپنا کردار، میری برداشت، میرا اپنا اسٹائل سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس پر مجھے پچھتاوا بھی تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ زمانے میں کسی لڑکی کی طرف میلی آنکھ سے کوئی دیکھ بھی لیتا تو لڑکی بدنام ہو جاتی تھی، اور میں نے تو فرحت کے دل میں موجود شاید سارے احترام کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے جاتے ہی پھر خوف، شرمندگی اور احساس جرم نے مجھے جکڑ لیا۔ میں نے فرحت ہی کے نہیں بی جان کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی تھی، اماں کی عزت کو بھی بٹا لیا تھا، منے دادا کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکی تھی۔ اگر کسی کو شوبہ بھی ہو جاتا تو شاید قیامت آ جاتی۔ اے خدا، مجھے معاف کر دینا، مجھے اپنے آپ سے زیادہ فرحت کا خیال آ رہا تھا۔ میں صبح اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ یہ خیال مجھے پریشان کر گیا۔ میری ہمت نہ ہوئی کہ میں نیچے جا کر بستر پر لیٹوں، لیکن جانا تو تھا، ہمت کی اور دبے پاؤں نیچے پہنچ گیا۔ बीजान के कमरे में रोशनी हो रही थी, बीजान की आवाज भी आ रही थी। मेरा तो दम ही निकल गया, लगा जैसे इन्होंने फरहत को रंगे हाथों पकड़ लिया है। जी चाह के भाग कर घर से बाहर चला जाऊं और फिर कभी सारी जिंदगी इन लोगों का सामना ना करूं। अभी मैं ये फैसला नहीं कर सका था कि क्या करूं कि अचानक भी जान कमरे से बाहर निकल आई। जमीन ने मेरे पांव पकड़ लिए, मैं जैसे पत्थर का बन गया, इस धमाके का इंतजार करने लगा जिसके बाद मेरे वजूद के, मेरी इज्जत करदार के चिथड़े उड़ जाते। मगर बीजान ने घबराए हुए अंदाज में जो कुछ कहा, इसने मुझे उछल जाने पर मजबूर कर दिया। वो कह रही थी, फहद बुखार में बेहोश पड़ी है जिया, एक घंटे से माथे पर पट्टियां रख रही हूँ, जरा भी आराम नहीं आया, जरा पानी तो लाओ सुराही से। ये कहकर वो और कटोरा मेरे हाथ में थमाकर वो तो इसी तेजी से अंदर चली गई। मेरे कानों में सीटियां सी बजने लगी। कुछ देर तक तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैं उछल कर भागा क्योंकि बीजान मुझे पुकार रही थी कि जल्दी लाओ पानी। मैंने सुहाई से पानी उडेला और लरजते हाथों में कटोरा थामे बीजान के कमरे में चला गया। वहाँ का मंजर देखकर फिर मेरे अंदर तूफान से उठने लगे, मगर ये तूफान सरवर अमेज नहीं थे बल्कि ऐसे तूफान थे जिसमें आदमी का सब कुछ बह जाता है, जहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नहीं होती। ये वो तूफान नहीं था जो उतरता है तो आदमी को होश आ जाता है, बल्कि ये वो तूफान था जिसके उतरने के बाद आदमी अपने होश खो देता है। फहद मेरे सामने बेहोश पड़ी थी, खाला बीबी इसके सरहाने बैठी थी, कुछ पढ़ पढ़ कर इस पर थूक रही थी। एक ताम चीनी के तसले में पानी था जिसमें कपड़े की पट्टियां तैर रही थीं। लग रहा था कि वो जाने कब से इस हालत में है और जाने कब से बीजान और खाला भी इसके सरहाने बैठी हैं। मैंने आगे बढ़कर फरहत के माथे पर हाथ रखा, वो बुरी तरह तप रही थी। कब से ये हालत है, मैं ऐसे बोला जैसे कोई और बोला हो, बस बिस्तर पर लेटी है। मैं बातें कर रही थी, कहने लगी कि बदन में दर्द हो रहा है। मैंने अपने पास बुला लिया, अभी मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे लगा मेरे करीब आग दहक रही है। उठ के देखा तो गशी छाई हुई थी और बुखार तेज हो चुका था, तब से ये हालत है। फिर वो कौन थी, देखते मेरे मुंह से निकला। कौन, बीजान चौंकी। नहीं कोई नहीं, मैं गड़बड़ा गया, अब क्या करें, यहाँ डॉक्टर है करीब में कोई नहीं, अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, इतनी रात को सवारी का क्या होगा। मैं बाजाहे इनसे बातें कर रहा था मगर हालत गैर हो रही थी। सवेरा होने वाला है, खाला भी बोली, मैं हकीम इबन को ले आऊंगी। तुम कहाँ थे, अचानक बीजान ने चौंक कर मुझे देखा। नींद नहीं आ रही थी, छत पर चला गया था। हाँ जब भी तो मैं कहूँ, दो बार निकली कमरे से, तुम्हारे कमरे के आगे तो मटका रखा है, तुम्हें पता भी ना चला, सोचा पहले तुम्हें उठा दूं, फिर ख्याल आया गहरी नींद में हो वरना उठ गए होते। वो बोल रही थी और मैं फहद की लंबी चुट्टियों को देख रहा था जो कस के बंधी हुई थी और उसके सर के नीचे से लटक निकली पलंग से की पट्टी से लटक रही थी। इसके बाल तो खुले हुए थे। इस ख्याल ने मेरे अंदर सनसनी सी फैला दी। वो कौन थी, क्या वो इसलिए चुप थी कि वो फरहत नहीं थी। मेरे नीचे आने से दो मिनट पहले ही तो वो गई थी। मेरे दिमाग में छक्कर चलने लगे, वो कौन थी, जैसे मुझे किसी ने डंग मारा। वो इस तरफ से आई थी जहाँ से मेरी मालूमात के मुताबिक ऊपर आने को सीढ़ियाँ नहीं थीं। ये ख्याल आते ही मैं पलट कर छत पर भागा। मैं बेख्तियार इस तरफ बढ़ा जहाँ से वो आई थी। जैसे ही मैंने नीचे झांका, दम बखुद रह गया। वहाँ सपाट दीवार थी, कहीं पांव टिकाने की भी जगह न थी। जबकि मैंने उतरते वक्त कुछ फासले से इसे देखा था और यूं लगा था जैसे वो पहली फिर दूसरी और फिर तीसरी सीढ़ी पर कदम रखती हुई धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल हो रही हो। या खुदा, मैंने वहीं बैठकर अपना चकराता हुआ सर दोनों हाथों में थाम लिया। वो कौन थी? कहां से आई थी? मैंने ये क्या कर दिया? मैं बड़बड़ा रहा था। जिया जिया, नीचे मुन्ने दादा मुझे आवाजें दे रहे थे। मैंने जल्दी से खुद को संभाला। सोचने का कोई लम्हा मेरे पास नहीं रहा था। ये तो ऐसा वाक्य भी नहीं था कि मैं मुन्ने दादा को राजदार बनाता। जो कुछ मैं कर बैठा था, इस जुर्म के एहसास ने पहले ही मुझे अधमुआ कर दिया था। और अब यह ख्याल कि वो फरहत नहीं थी, कोई और थी, मुझे और हौलाए दे रहा था। जिया जी आया मुन्ने दादा। मैंने चेहरे पर हाथ फेरा, जिसे मेरे हाथ फेरने से परेशानी और खौफ के सारे तासरात मिट ही तो जाएंगे। फिर मैं तेजी से नीचे आया। ये वक्त है छत पर जाने का। फरहत की हालत देखी है? वो मुझे देखते ही डांटने लगे। जी जी मुन्ने दादा, खाला भी कह रही थी कि वो हकीम को बुला लाएंगी। मैंने गड़बड़ाकर जवाब दिया। और तुम सुनकर छत पर चले गए? उन्होंने नाराजगी से कहा। नहीं, वो तो मैं तो जाओ, वो गरजे, पता करो हकीम का और लेकर आओ। सारी रात बच्ची तड़पी है और तुम? मैं तेजी से अपने कमरे में घुस गया। जूते पहनकर बाहर आया। कपड़े तब्दील करने का वक्त नहीं था। खाला बी ने मुझे पता समझाया। ये अगले मोहल्ले के घर का पता था। मैं घर से निकला तो मलगजे उजाले में परिंदों के गौल परवास कर रहे थे। आसमान के किनारे सुरमई हो चुके थे और करीबी मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही थी। जाने मुझे क्या हुआ कि अजान की आवाज कानों में पड़ते ही मुझ पर हैबत तारी हो गई। दिल खौफ और गुनाह के एहसास से भर गया। मैं हकीम के पास जाने के बजाय सीधा मस्जिद के करीब बने हमाम में चला गया। मैंने गुसल किया। हमाम ही से तहम्मद और बनियान लेकर एक तौलिया कंधों पर डालकर सीधा मस्जिद चला गया। वहाँ रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगी। सिराते मुस्तकीम पर चलने की तमन्ना की। हिदायत के लिए गिड़गड़ाया और फिर हमाम जाकर अपने कपड़े पहनकर हकीम इबन के घर पहुंचा। इन्हें साथ लेकर घर आया तो मुन्ने दादा बेचैनी से तहर रहे थे। इतनी देर कर दी तुमने, तुम बेपरवाह कब से हो गए? इन्होंने कहा और फिर हकीम इबन को लेकर कमरे में चले गए। मैं वहीं सहन में पड़े पलंग पर ढह गया। हकीम इबन ने कुछ दवाएं दी और चले गए। बीजान बहुत परेशान थी। मुन्ने दादा भी मुस्तरब थे। खाला भी मुसलसल दुआएं पढ़ रही थी। सब फरहत के लिए परेशान थे, मगर मैं अजीब सी कैफियत से दो चार था। ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो जिसके साथ मैंने 2-2.5 घंटे गुजारे, जिसे महसूस किया, छुआ, जिसकी खुशबू को अपने अंदर उतार लिया, वो कोई मावराई मखलूक थी? वो 100% इंसान थी? अगर वो फरहत नहीं थी तो फिर कौन थी? ये वो सवाल था जिसने मुझे हर तरफ से बेनियाज कर दिया था। मैं शर्मिंदगी के जिस एहसास से अपनी शख्सियत को कुचला हुआ महसूस कर रहा था, इससे तो मुझे आजादी मिल गई थी, मगर अब मैं जिस कर्प से दो चार था वो इंतहा का था। इस लड़की की सांसों की हिद्दत अब भी मेरे अंदर बसी हुई थी। इसके नरम मुलायम हाथ, इसके खुशबूदार बाल, इसकी घुंघरू बजाती सी हंसी, ये 100% इंसानी थी। ये वो बात थी जिस पर मेरा दिमाग इसरार कर रहा था, मगर वो फरहत नहीं थी। ये बात भी बार बार गूंज रही थी। कौन थी वो? मैं इतना बेख्तियार हो गया कि ये जुमला मेरे मुंह से निकला और पास से गुजरते हुए मुन्ने दादा के कानों में पड़ गया। जिया क्या बात है, क्या कोई? नहीं मुन्ने दादा, वो मैंने शायद ख्वाब देखा था। मैं गड़बड़ाकर उठ बैठा। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? इन्होंने राजदाराना अंदाज में झुक कर पूछा। नन नन नहीं, सब ठीक है। फहद कैसी है, इसे होश आया? हाँ, मेरा ख्याल है कि अब कुछ बेहतर है। दवा की दो खुराकें दी हैं, कुछ देर में और ठीक हो जाएगी। तुम अंदर जाकर बैठो, बी जान तो होरी हुई है। वो ये कहते हुए पानी की टंकी के पास जा बैठे और वजू करने लगे। अब आसमान पर रोशनी छाने लगी थी। जो हो चुका था इस पर सोचने को जिंदगी पड़ी थी। कैफियत अच्छी हो या बुरी, आदमी को अकेले ही इसके नशीबो फराज से गुजरना पड़ता है। मैं जिस अजियत से दो चार था, जिस इसरार में फंस चुका था, मुन्ने दादा के राजदार होते हुए भी इन्हें कुछ नहीं बता सकता था। मैं निढाल सा उठकर अंदर चला गया। फरहत का सामना करने की जो हिम्मत टूटी थी वो तो बन गई कि वो मेरे किरदार के कमजोर पहलू से ना आशना रही, मगर इसकी कीमत चुकाने में मैं टूट चुका था। आह, कौन है, कौन आया है बीजान? अचानक फरहत की कमजोर सी आवाज सुनाई दी। इसकी आंखें बंद थी, शायद इसने मेरी आहट सुन ली थी। कौन नहीं बेटा, जिया है। खाला बी ने इसके बालों पर हाथ फेरते हुए प्यार से जवाब दिया। और कोई नहीं आया? वो फिर गर्दन को एक तरफ डालकर बोली। इस बार इसने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर शायद बुखार की शिद्दत से खोल नहीं पाई। नहीं, और कौन आता? फरही बी जान ने इसकी पेशानी का बोसा लिया। मेहमान आए थे, अब मैं इसके करीब जा बैठा। मुझे लगा जैसे वो किसी अहम राज से पर्दा उठाने वाली है, और वाकई ये राज मेरे लिए कितना अहम, कितना सरबस्ता था, ये तो मैं ही जानता था। मेरे अंदर की तमाम कुव्वतें समाप्त बनकर इसकी जानिब निगरा हो गई। कोई नहीं आया बेटा, इतनी रात को कौन आता है? अब तो फजर की अजानें हो रही हैं। बी जान की आवाज एकदम रंध गई। कौन आया था फरहत? मैंने इशारे से बी जान को चुप करा के इससे पूछा। आ हाँ, वो आई थी, चली गई। खुशबू चांदनी में, बिल्डिंग का बल्ब है। मेरा खून खुश्क हो गया। वो गशी के आलम में जाने क्या कह रही थी या क्या कहने वाली थी। बीजान, आप जाकर सो जाएं। खाला भी, आप भी कुछ देर लेट लें। इस पर गशी तारी है, मैं काफी सोया हूँ, मैं बैठ सकता हूँ। मैं गड़बड़ाकर कह रहा था। नमाज पढ़ लूं, नींद भला कैसे आएगी? बीजान घुटनों पर हाथ रखकर उठते हुए बोली। आपा, आप जाकर कुछ लेट जाएं। आखिर जुमला उन्होंने खाला बी से कहा था। इन्हें भी नमाज पढ़ना थी। गनीमत हुआ कि इन दोनों के कमरे से जाने तक फरहत कुछ नहीं बोली, निढाल सी पड़ी रही। मैंने भी इसे नहीं छेड़ा। मैं जान गया था कि इन लोगों की मौजूदगी में इसे छेड़ना खतरनाक है। इन दोनों के जाते ही मैंने फरहत का बगौर जायजा लिया। वो जो भी थी, फरहत नहीं थी, इसलिए कि फरहत कार्टन के कपड़े पहने थी, जबकि मैं रेशमी कपड़ों से उलझा था। फरहत की कसी हुई चोटी बंदी थी और इसके रेशमी बाल खुले हुए और बिल्कुल सीधे थे, जबकि फरहत का बाल मोटा भी था और मैं हल्का सा करल आया हुआ था। मैंने बेख्तियार इसका हाथ पकड़कर लम्स को महसूस करना चाहा। मेरी हिस लामसर जैसे चीख उठी कि नहीं, ये वो लम्स नहीं है, वो गदास नहीं है। इस लम्हे मुझे हैरत हुई, ये सोचकर कि मेरी जो हैरत अंगेज बिनाई थी, जो अंधेरे में भी सोई को वाजह देख लिया करती थी। वो मेरे काम क्यों ना आई, मैं घंटों उलझा रहा और मुझे इसमें और फरहत में कोई फर्क क्यों महसूस नहीं हुआ। नहीं, तुम्हारा हाथ जलता है, मुझे नहीं छुओ। फरहत कसमसाई, मैंने जल्दी से इसका हाथ छोड़ दिया। हालांकि वो बिल्कुल गलत कह रही थी, इसका हाथ तप रहा था और मेरे हाथ ठंडे थे। फरही सुनो, मैं जिया हूँ, तुम ऊपर क्यों नहीं आई थी? मैंने छुप कर इसके कान में सरगोशी की। मैं गिर जाती हूँ, चढ़ नहीं सकती, खुशबू बहुत तेज है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी ऊपर, डर लगता है, वो फिर बेराबता जुमले बोल रही थी और मैंने मरबूत कर रहा था। मैंने बुलाया था न फरहत, तुम आई थी? मैंने फिर सरगोशी की। नहीं, डर लगता है। फिर इसने बहुत गहरी सांस लेकर जुमला अधूरा छोड़ दिया, जिसे थक गई हो। फिर कौन आया था? तुम और मैं थे ना ऊपर छत पर, मैं इस पर झुका हुआ था, कोई आया था? वो बोली और फिर लगा जैसे सो गई हो। मैंने कई बार हिलाया, बात करने की कोशिश की, मगर वो बेखबर हो चुकी थी। इसकी बातें वाज़ह नहीं थी और अब कुछ पूछना भी बेकार था, इसलिए कि गालबन बीजान नमाज पढ़ रही थी। मुन्ने दादा और इनकी बातें करने की आवाजें आ रही थी। मैं फरहत को देखता और सोचता रहा कि क्या इसे होश में आने के बाद याद होगा कि कोई आया था। इतना तो इसकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि वो ऊपर नहीं आई और जो भी आई थी इससे फरहत की मुलाकात हुई थी। फिर क्या हुआ? वो रात अच्छी भली थी तो इतनी बीमार कैसे हो गई? ये सब जानने के लिए मुझे बहरहाल इसके होश में आने का इंतजार करना था। जिया बटवा, चाय पी लो, नाश्ता करोगे? बीजान अंदर आकर बोली। नहीं बीजान, नाश्ता तो नहीं करूंगा, बस चाय पीऊंगा, मैंने खड़े होते हुए जवाब दिया। सो गई ये? जी, मेरा ख्याल है कि आराम करने से जल्दी बेहतर हो जाएगी। हाँ, हकीम साहब भी कह गए हैं कि जितना सो ले बेहतर है। हम दोनों बाहर आ गए। मुन्ने दादा चाय पर मुंतजर थे। उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा। मैं नर्वस हो गया, एहसास जुर्म आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। लाख वो दुनिया की निगाहों से अपने जुर्म को छुपा ले, मगर वो जो अंदर बैठा है इस जुर्म की हकायतें सुनता रहता है। इसकी आवाज इतनी बुलंद होती है कि लगता है पूरी दुनिया में गूंज रही है, सब सुन रहे हैं। हालांकि ये गूंज अंदर ही रहती है, मगर इस गूंज से ही तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। मुजरिम पहचाना जाता है, झूठ पकड़ा जाता है, आदमी नर्वस हो जाता है। यही मेरी कैफियत थी। मुझे लग रहा था जैसे रात की पूरी दास्तान मेरे चेहरे पर लिखी हुई है। मुन्ने दादा सब कुछ पढ़ रहे हैं। मैं खुद पर काबू पाने के चक्कर में और नर्वस हो रहा था। आप नाश्ता करें, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है और पराठे तो यूं भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हजम ही नहीं होते, मैंने बैठते हुए कहा और अपने लहजे को काफी मजबूत बना लिया। लगा कि जैसे मैं अपनी कैफियत को छुपाने में कामयाब रहा हूँ, मगर इस वक्त और बौखला गया जब मुन्ने दादा ने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, कौन से नाश्ते और किन पराठों की बात कर रहे हो? मैंने चौंक कर पहले इन्हें फिर इनके सामने रखे चाय के सामान को देखा। वहाँ सिर्फ चायदानी, दूधदान, चीनी दान के अलावा तीन चाय की प्यालियाँ थी, नाश्ते नाम की कोई चीज नहीं थी। जी नहीं, वो भी जान कह रही थी कि नाश्ता कर लो, पराठे तो बेटा फरहत ही बना लेती है, वो भी कभी कभी जी चाहता है इसका, वरना मैं और आपा तो बासी रोटी और रात के सालन से ही नाश्ता करते हैं। बी जान मेरी बात नहीं समझी। चाय पियो, मुन्ने दादा ने यूं कहा जैसे कह रहे हो होश में आ जाओ। मैं जल्दी से झुक गया। फिर मुझे नहीं पता कि मुन्ने दादा और बीजान क्या बातें करते हैं। कभी कभी मेरा ध्यान इनकी बातों की तरफ हो जाता था, वरना मैं अपने अंदर ही छुपा रहा, खुद को टटोलता रहा, इस लड़की को खोजता रहा जिसने इतना वक्त मेरे साथ बगैर किसी रब्त के गुजार लिया था। एलन, अचानक मुझे इस ख्याल के साथ ही झुरझुरी सी आ गई। एक मरी हुई औरत का तसव्वुर करते ही मुझे उफकाई आ गई। मैं उठ गया, जी खराब होने लगा। नहीं एलन, ऐसी हरकत नहीं कर सकती। अभी शादी बाबा ने कहा था कि वो मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। बतसला ने भी कहा था कि वो मुझे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए मुझे परेशान करने को इसने पीटर का ये हाल कर दिया। नहीं, इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो फिर मेरे दिमाग में फिर झक्कर चलने लगे। क्या इस मोहल्ले की कोई लड़की थी? क्या फरहत की कोई दोस्त थी, कोई जानने वाली? जिया मशवरा दो, क्या करें? मुन्ने दादा की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने लम्हा भर को इन्हें देखा, फिर मुझे खुद पर गुस्सा आ गया। मैं नौ उम्र लड़कों जैसी हरकतों का शिकार तो हुआ ही था, अपनी सोच अपनी कैफियत पर भी काबू पाने में इसी तरह नाकाम हो रहा था जैसे कोई नौ उम्र लड़का। मैंने सब कुछ जहन से झटक दिया। वो जो भी थी, इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि मुझे तो जिंदगी के सबसे हसीन पहलू से आसना किया था। आप बुरा मत मानेगा मेरी इस बात का, इसलिए कि इंसान इन सरवर अंगेज लम्हों से हटकर और कुछ भी नहीं है। इन्हीं लम्हों की तो तखलीक है ये मेरा नजरिया है। बहरहाल ये जरूरी नहीं कि मेरा ये नजरिया दुरुस्त हो, और मैं इसरार भी नहीं करूँगा कि आप दुनिया को, यहाँ मौजूद रिश्तों और जज्बों को मेरे ही नुक्ते नजर से लें। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं खाली अजहन होकर मुन्ने दादा के करीब आ बैठा। मेरा एतमाद बहाल हो रहा था, इसलिए कि मैंने जो कुछ किया सो किया, अब अपने आप को संभाल लेने का अहद भी कर लिया था। शायद तौबा कर लेना इसी को कहते हैं, और खुदा का माफ कर देना भी, कि वही तो एतमाद बहाल करता है जाने कैसे से निकाल कर कुवत इरादी मजबूत करता है। जी मुन्ने दादा, मैंने इनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या करें? फहद को ऐसी हालत में छोड़कर जाना जेब तो नहीं देता। मेरा ख्याल है कि आज और रुक जाएं। यहाँ बीजान और खाला भी ही तो हैं। मुंशी जी वगैरह भी यहाँ से चले गए, कोई मत नहीं, फहद ठीक हो जाए तो बेहतर है। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, मैं घर की तरफ से भी परेशानी है। वहाँ के लिए परेशान ना हो, क्योंकि मुझे यकीन है तैयब अब तक वहीं होगा। वो चूंकि है, ऐसा नहीं हो सकता, इस नहजार की पिटाई कर दूंगा मैं। इन्हें एकदम गुस्सा आ गया। अच्छा ही तो है मुन्ने दादा, हमारे पीछे कोई तो है वहाँ। तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं गया होगा? हो सकता है चला गया हो, इन्होंने नरम अंदाज में और पुरसोच लहजे में कहा। मैं इसकी तबीयत से वाकिफ हूँ। वो रोजाना मेरठ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन और हमारे घर पहुँचने वाले वक्त का अंदाजा करके घर से गायब हो जाता होगा और फिर लौट आता होगा। वो लंबी छुट्टियाँ लेकर आया था। बहुत बेलगाम हो गया है ये लड़का। नासिर मियाँ आजीज आए हुए थे। वो छोटा बच्चा नहीं रहा मुन्ने दादा, जवान है, अच्छा बुरा जानता है। अब हर बात पर टोकना भी ठीक नहीं है। नासिर चचा इसे बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। घर पर होने वाली सख्ती ही औलाद को घर से फरार की राह सुझाती है। ये नॉवेल कॉल बेल हिस्सा दोम का बकिया हिस्सा पार्ट 18 में समाप्त फरमाएं।